Welcome to Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic news of the day. And today, we'll also be taking calls from you and any queries that you may have on economic, business and stock market news. But do remember that we don't address company-specific queries. You can call us on our telephone numbers 2331-4444 and 2342-1050. But do not forget to prefix 011 before these numbers if you're calling from out of Delhi. Well, my name is Nishit Kumar and with me is my co-anchor in Hindi, Nikhil Kumar.
नमस्कार. मार्केट मंत्र कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है. आपके लिए लेकर आए हम शेयर बाजार से जुड़ी खबरें, व्यापार जगत की हलचलों के बारे में जानकारी. आज सोमवार है और आप अपनी आर्थिक जिज्ञासाओं के समाधान के लिए हमें फोन कर सकते हैं हमारे विशेषज्ञ आपके प्रश्नों के उत्तर देने के लिए. इसके लिए आप हमें 2331-4444 और 2342-1050 पर कॉल कर सकते हैं. दिल्ली के बाहर के श्रोता 011 लगाना न भूलें और श्रोताओं, आपके प्रश्नों का उत्तर देने और आर्थिक खबरों पर चर्चा के लिए आज स्टूडियो में हमारे साथ हैं आर्थिक विशेषज्ञ राजीव रंजन जी. राजीव जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है.
जी नमस्कार.
और सबसे पहले हेडलाइंस के साथ में अनिश्चित.
विल बिगिन विद द हेडलाइंस. डोमेस्टिक बेंचमार्क इंडिसेज एंड फ्लैट विद अ स्लाइट गेन. सेंसेक्स क्लोजेज एट 81,356. निफ्टी एट 24,836. इंडियाज फॉरेक्स रिजर्व टचेज न्यू ऑल टाइम हाई ऑफ 670.86 billion dollars, says the Reserve Bank of India. And MSME sector provides 20.55 crore employment as on 24th of July 2024, says Union Minister for MSME Jitan Ram Manji.
भारतीय घरेलू शेयर बाजार में सेंसेक्स और निफ्टी आज करीब करीब सपाट बंद हुए. सेंसेक्स 81,356 और निफ्टी 24,836 अंक पर पहुंचा. भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा, भारत का विदेशी मुद्रा भंडार नई ऊंचाई पर पहुंचकर 670 अरब 86 करोड़ डॉलर हुआ. और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा, एमएसएमई क्षेत्र ने 24 जुलाई 2024 तक 20 करोड़ 55 लाख रोजगार के अवसर प्रदान किए. शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की और शेयर बाजार से जुड़ी खबर आपके लिए. भारतीय घरेलू शेयर बाजार में सेंसेक्स और निफ्टी आज करीब करीब सपाट रहते हुए बंद हुए. दोनों सूचकांकों में शुरुआती कारोबार में बढ़त का सिलसिला देखा गया, लेकिन दोपहर बाद सत्र में मामूली गिरावट आई. बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का संवेदी सूचकांक 23 अंक यानी 0.03% की वृद्धि के साथ 81,356 अंक पर पहुंचकर बंद हुआ. वहीं दूसरी ओर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी कारोबार के अंत में सिर्फ 1 अंक की बढ़त यानी 0.01% ऊपर चढ़कर 24,836 पर आ गया. बीएसई के विस्तृत बाजार में आज मिड कैप में 0.08% की तेजी देखी गई और स्मॉल कैप सूचकांक में 1.2% की वृद्धि दर्ज हुई.
India's equity benchmark indices Sensex and the Nifty ended flat with a thin gain today. Both indices opened firm and dropped sharply in the afternoon session. At the closing bell, the BSE Sensex added 23 points or 0.03% to close at 81,356. The NSE Nifty added just 1 point or 0.01% to close at 24,836. In the Nifty, 245 companies hit their 52-week high, 16 hit their 52-week low. In the broader market at the Bombay Stock Exchange, the mid-cap index was up by 0.8% and the small-cap index advanced 1.2%. 16 out of the 30 companies registered gains in the Sensex index. The top three gainers today were Larsen & Toubro, 2.8%, Bajaj Finserv, 2%, and Mahindra & Mahindra, 1.7%. Conversely, the three major laggards were Titan, 2.4%, Bharti Airtel, 2.2%, and ITC, 1.3%. In the sectoral indices at the Bombay Stock Exchange, 14 out of the 20 sectors logged gains. The top gainers were capital goods, 2.7%, industrials, 2.3%, and realty, 1.5%. Conversely, the major laggards were tech and telecommunications, 0.6%, consumer durables, 0.4%, and information technology, 0.3%. The overall market breadth at the Bombay Stock Exchange was positive. Out of 4,198 companies, shares of 2,348, advanced 1,706 declined, and 144 remained unchanged. And we are joined in by our first caller for the day, Navneet from Jaipur. Navneet, welcome to the show.
Good evening, Master Mantra team, and myself Navneet Reddy, calling from Jaipur.
Good evening, Navneet.
So my question to Master Mantra is about the rate cut by RBI. As we understand, RBI has been delaying the rate cut, and in anticipation, if Fed will cut the rate cut, first Fed will cut the rate cut, then RBI will follow the suit. But my question is that if RBI goes ahead with the rate cut, then definitely it will affect banks' NIM margin. Because most of the banks' corporate loans are linked to repo. So, on the other hand, banks are paying high rate of interest on their deposits. Mm-hmm. On the other hand, they will get lower rate of interest on their advances. So, it will ultimately affect their net interest margin. Thank you.
Mm. Navneet ji, rest assured that banks will take care of their margins and they will try to keep their margins intact. And their easy formula is very simple. They will start decreasing the rates first on the deposits and then on their advances. So, bank apne margin ko lekar ke zyada compromise nahi karne wale hain. Isko lekar ke aap nishchint rahiye. Aur chuki aap in khabron ko bahut acche se follow karte hain, to aap khud hi jaan rahe hain ki RBI ko intezar karna hai Federal Reserve ke faisle ka. और हो सकता है कि अब शायद उसमें बहुत ज्यादा समय ना रहा ना बाकी बचा हो शायद अगली मीटिंग में या उसके अगली मीटिंग में ये डिसीजन हो जाएगा और उसके बाद आरबीआई को आगे इस पर विचार करना पड़ेगा देखिए फेडरल रिजर्व के बाद ही आरबीआई ये निर्णय क्यों करे इसके पीछे कारण ये है कि करेंसी मार्केट जो है वो ग्लोबली पूरी तरह से लिंक है आप उसमें अलग तरीके से नहीं चल सकते हैं बाकी लोग क्या कर रहे हैं उसका आपको ध्यान रखना पड़ता है
और इस बीच रायगढ़ से हमारे अगले श्रोता हैं कुश कुश आपका प्रश्न पूछिए
जी नमस्कार सर सर मेरा पहला सवाल ये है कि इंट्राडे में कौन कौन से टैक्स लगते हैं क्या शॉर्ट टर्म गेन टैक्स इस पे लगता है क्या और दूसरा मेरा सवाल ये है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से किस किस चीजों पर लगता है और किस प्रकार लगता है
देखिए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जिन चीजों पर लगता है उनकी लिस्ट काफी लंबी हो सकती है उनमें लिस्टेड चीजें भी हैं जो आप शेयर बाजार में खरीदते हैं अनलिस्टेड चीजें भी हैं उनमें रियल एस्टेट हो सकता है गोल्ड हो सकता है कोई भी प्रॉपर्टी जहां पर आप एक लंबे समय तक और वो लंबा समय जो है वो अलग अलग एसेट क्लास में अलग अलग टाइम पीरियड है जैसे अभी भी इक्विटी में 12 महीने का ही है लेकिन अगर आप रियल एस्टेट में जा रहे हैं तो वहां पे 2 साल हो जाएगा अगर आप इसी तरह से दूसरे एसेट्स में भी देखेंगे तो आजकल ज्यादातर में आपको 2 साल या 3 साल का आपको पीरियड मिलेगा जिसके बाद लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगना शुरू हो जाता है और इसके पीछे सरकार का उद्देश्य ये रहता है कि ज्यादा से ज्यादा निवेशक एक स्पेकुलेटिव ट्रेड करने के बदले किसी एसेट में निवेश करके बने रहें इसके लिए एक तरह का इंसेंटिव है और इसीलिए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स जो है वो हमेशा ही शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स से कम होता है कई बार शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो है उसको आप देखेंगे कि उसे आपकी इनकम में क्लब किया जाता है यानी उस पर लगने वाला टैक्स जो होता है वो उसी ब्रैकेट में होता है जिस ब्रैकेट में आप इनकम टैक्स दे रहे होते हैं अपनी बाकी इनकम पे तो कभी कभी कुछ रेयर केसेज में हो सकता है कि शायद आपके लिए शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कम भी हो जाए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से अगर आप बहुत ही कम इनकम ग्रुप वाले में हैं और आप जिस एसेट क्लास में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हासिल कर रहे हैं वो ऐसे एसेट क्लास में है जहां पर उससे होने वाली शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को आपके टोटल इनकम में जोड़ दिया जाता है बजाय इसके कि उस पर एक फिक्स रेट ऑफ टैक्स लगाया जाए
उन्होंने ये भी पूछा था कि इंट्राडे पर कौन सा टैक्स लगता है लॉन्ग मतलब लॉन्ग टर्म गेन या फिर शॉर्ट टर्म गेन
इंट्राडे
जी इंट्राडे के बारे में पूछ रहे थे
देखिए इंट्राडे में आप इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं वहां वो प्योरली स्पेकुलेटिव एक्टिविटी है तो या तो उससे होने वाले फायदे आप स्पेकुलेटिव इनकम में जोड़ेंगे या बिजनेस इनकम में जोड़ेंगे और इसके बारे में आपके सीए आपको ज्यादा बेहतर एडवाइस करेंगे
Our next caller is N.R. Prasad from Bengaluru. Mr. Prasad, welcome to the show.
Thank you. Good evening, Market Mantra. This is N.R. Prasad from Bangalore.
Yeah, good evening, Mr. Prasad. Go ahead with your question.
Before that, I just want to correct Mr. Vijay Bhushan on Saturday, because he said that Sensex never fell down on the first four working days of last week. Mm-hmm. And all four working days, that is Monday to Thursday, all four days fell down. Friday only it went up by 1292, which he gave a wrong information, which I am correcting him.
You want to correct whom, Mr. Prasad?
Mr. Vijay Bhushan, who was there on Saturday.
Okay.
All right.
Said that, on all 4 days, it fell down. So only on the fifth day, what is the reason for going up by 1293 points? He said that it never fell down. Sensex never fell down. Mm-hmm. If you want, I can give the figures on which day, opening balance and closing balance of the Sensex.
जी आप प्रश्न पूछिए आपका जी प्लीज आस्क योर क्वेश्चन
या
गो आस्क द क्वेश्चन या आस्क द क्वेश्चन सी आई वाज ऑन द प्रिपरेशन ऑफ द आईटीआर आईटीआर 2 फाइलिंग सी आई हैव अ नेट ऑफ प्रॉफिट इन द करंट ईयर दैट इज 2023-24 व्हिच आई वुड लाइक टू कैरी ऑन फॉर द असेसमेंट ईयर 24-25 बट माय व्हाट एवर द प्रॉफिट is not getting net against the carryover of the previous year of the 2020-21. I have some carryover, 3 lakhs plus. This profit of this is about 1.75 lakhs, which is not getting adjusted to that. I would like to know why. Is it because I am trying to file after the 23rd July, after the budget, because there is a change in the captain gains percentage? Thank you. This is my question.
Nishit, I believe you will have to pass this question to some tax expert, because
that's right.
In case you have a tax expert session.
Yes, we do have Rajiv.
So you will have to transfer this question
yes,
to him.
Yes, yes. Mr. Prasad, there is a special session which we broadcast, especially related to tax. So probably he would be the better person to answer this, because this entails a bit of technicality in that. And I guess this is not the correct time for our expert to answer that. So we'll wait for the next time. And meanwhile, we are joined in by Sukhdev from Delhi.
Hello.
Ji.
Sir, my question is regarding income tax.
Mm-hmm.
Sir, in old regime as well as in new regime, up to 7 lakh, we have not to pay any tax. In old regime with saving and in new scheme without saving. Then why then two regimes are being continued? When Nirmala Sitharaman has said in the first budget and given this new scheme, new regime, that it will be phased out. And it has yet not been phased out of old regime. What is the reason why the two parallel things are going on, sir? When there is, government is also encouraging new regime only, then old regime should be stopped, sir? Can you please give me some comment on this?
सुखदेव जी, जैसा आपने कहा कि वित्त मंत्री ने बताया कि न्यू टैक्स रिजीम को ज्यादा प्रोत्साहन दिया जा रहा है, और इससे पहले सरकार अपनी मंशा स्पष्ट कर चुकी है कि ओटीआर ओल्ड टैक्स रिजीम को धीरे धीरे फेज आउट किया जाएगा। तो फेज आउट करने का तरीका यही होता है कि आप जिस विकल्प को ज्यादा प्रमोट करना चाहते हैं, जिस विकल्प को अंततः आप बनाए रखना चाहते हैं, उसको आप ज्यादा अट्रैक्टिव बनाते हैं, ज्यादा आकर्षक बनाते हैं, और जिस विकल्प को आप धीरे धीरे फेज आउट करना चाहते हैं उसको ज्यादा आकर्षक नहीं बनाते हैं,
डिसइंसेंटिवाइज करते हैं उसको।
अगर आप उसे डिसइंसेंटिवाइज न भी करें तो उसमें नया इंसेंटिव नहीं जोड़ते हैं, और दूसरे विकल्प में जिसको आप आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं उसको ज्यादा अट्रैक्टिव बनाते जाते हैं। फेज आउट करने का यही एक आसान तरीका है, उससे ज्यादा हार्ड लैंडिंग वाले तरीके होते हैं जो शायद सरकार बचना चाहती है।
और इस बीच में फरीदाबाद से प्रेम पुजारी हमारे साथ जुड़े हुए। प्रेम पुजारी जी, कार्यक्रम में स्वागत है आपका, प्रश्न पूछिए आपका।
पूरी आकाशवाणी टीम को नमस्कार।
नमस्कार, प्रश्न पूछिए।
और जैसा कि सीनियर सिटीजन के लिए मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि हमारी एफडी अभी मैच्योर हो चुकी है, और सीनियर सिटीजन के लिए ये क्या सरकारी बैंक में ही रिन्यू कराना चाहिए कि प्राइवेट बैंक के अंदर मैं कितना विश्वास कर पाऊं, क्योंकि सरकारी बैंक में पौने आठ मिल रहा है इंटरेस्ट रेट, और वहां मिल रहा है 8.5-8.55। क्या सर प्राइवेट बैंक में जो पिछले बार देखा गया था 2-3 बैंक के मालिक पकड़े गए थे, उन पे हम विश्वास कितना कर सकते हैं?
देखिए, जितने भी बैंक हैं देश में उन सबको आरबीआई गवर्न करता है, रेगुलेट करता है। तो बैंकिंग सिस्टम को लेकर के आपके मन में इस तरह के सवाल नहीं होने चाहिए, दुविधा नहीं होनी चाहिए। कई बार कुछ परेशानियां आती हैं, वो बहुत छोटे बैंक होते हैं, और उनमें भी खास करके जो कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं उनमें कई बार दिक्कतें होती हैं क्योंकि उनके साइज बहुत छोटे होते हैं। यदि आप टॉप लीग के प्राइवेट बैंक्स के साथ भी रहते हैं तो मुझे नहीं लगता कि वहां पर आपके सामने कोई बड़ा रिस्क होगा इस बात का कि आपके पैसे डूब जाएंगे। लेकिन ध्यान रखिए इस बात का कि जब आप किसी बैंक को पैसे देते हैं तो सिद्धांत रूप में, इन थ्योरी कह रहा हूं कि हां आप एक रिस्क लेते हैं, वो रिस्क किसी दूसरे मार्केट के कंपैरिजन में, जैसे इक्विटी में अगर आप शेयर बाजार में पैसे लगाते हैं वहां सीधे सीधे आपके प्राइसेज ऊपर नीचे होते हैं, उस हिसाब से आपका एक रिस्क रहता है। लेकिन क्या बैंक में जब आप पैसे देते हैं तो क्या आपका रिस्क जीरो होता है? ऐसा नहीं है सिद्धांत रूप में, लेकिन प्रैक्टिकली अगर आप देखें तो भारत में जो बड़े बैंक हैं उनके साथ किसी का पैसा डूबा हो ऐसी अभी तक हिस्ट्री नहीं है।
एक बात और राजीव जी मैं ऐड करना चाहूंगा, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण सवाल पूछा है फरीदाबाद से हमारे श्रोता ने, क्योंकि जैसा इन्होंने शुरू में बताया कि एक सीनियर सिटीजन है, जैसा कि हम जानते हैं आमतौर पर एक नॉर्मल फॉर्मूला है कि एज यू ग्रो ओल्ड, जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे आपकी रिस्क लेने की क्षमता कम होती है, नहीं होती है वो अलग बात है, लेकिन एक फॉर्मूला के तहत थोड़ा सा हमें थोड़ा संयम के साथ वो चलना ही चाहिए। रही बात रिस्क की, तो रिस्क छोटे बैंक हो या बड़े बैंक हो, जैसा कि आपने भी बताया अपने कमेंट्स में कि रिस्क या तो हर जगह है या फिर कहीं नहीं है, तो कहीं नहीं जो एब्सोल्यूट टर्म्स है वो कुछ भी नहीं होता, रिस्क तो है, अगर है तो है, बड़े में भी है छोटे में भी है। हाँ ये और बात है कि मार्केट कैपिटलाइजेशन बड़े बैंकों का जैसे एसबीआई या कोई भी वैसा है तो नेचुरल सी बात है कि वो उतने ज्यादा स्ट्रेंथ के साथ वो खड़े हैं मार्केट में, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं होता है कि जो छोटे बैंक हैं, क्योंकि जैसा आपने भी बताया कि सारे ही बैंक छोटे हों बड़े हों कमर्शियल हों जो भी हों पीएसबीज व्हाटएवर, सब आरबीआई के रूल के बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं, उनके तहत ही वो गवर्न होते हैं। हाँ यदा कदा यहां वहां हेयर एंड देयर छोटे मोटे वो छोटी मोटी घटनाएं हो जाती हैं, और जैसा कि आमतौर पर हमने देखा भी है कि कोऑपरेटिव बैंक्स हों या उस टाइप के बैंक्स हों, रूरल बैंक्स हों, उनमें ये घटनाएं आमतौर पर ज्यादा देखी जाती हैं। तो हमारा सलाह तो यही है कि अगर आप अपने निवेश को, अपने पैसों को बिल्कुल ही जीरो रिस्क के साथ अगर ले जाना चाहते हैं तो बेहतर यही होगा कि आप बड़े बैंक के साथ आप बने रहें।
और श्रोताओं को बता दें विदेशी बाजारों में मजबूत अमरीकी डॉलर ने कच्चे तेल की कमजोर कीमतों से लाभ कम कर दिया, जिसके कारण अमरीकी डॉलर के मुकाबले रूपया 83.73 रूपये पर स्थिर स्तर पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी बाजार में रूपया 83.70 रूपये पर खुला था और कारोबारी सत्र के दौरान डॉलर के मुकाबले 83.74 रूपये के निचले स्तर को ये छू चुका था। और राजस्थान से सुभाष हमारे साथ है। सुभाष आपका प्रश्न क्या है?
नमस्कार मार्केट मंत्रा।
नमस्कार, प्रश्न पूछिए।
मैं है ना फरवरी में पब्लिक सेक्टर कंपनी से रिटायर हुआ हूँ। हमारी कंपनी के अंदर पेंशन के लिए एक प्रोविजन है कि हर महीने बेसिक और डीए का कुछ परसेंटेज एक फंड में देते हैं और उसके थ्रू एलआईसी में जाता है, और 60 इयर्स के बाद रिटायर होने पे जो कॉर्पस बनता है उसका 1/3 कम्यूट कर सकते हैं। मेरा क्वेश्चन है कि जो 1/3 हम कम्यूट कर रहे हैं वो क्या टैक्सेबल है, क्योंकि सारा का सारा कंपनी देती है।
जी निखिल, आज संयोग है कि ज्यादातर सवाल टैक्स से जुड़े हुए आ रहे हैं
जी।
अनफॉर्चुनेटली आई एम नॉट अ टैक्स एक्सपर्ट।
कोई बात नहीं है सुभाष जी, जब हमारे टैक्स एक्सपर्ट जुड़ेंगे, जो कि आमतौर पर सप्ताह में एक दिन हमारा कार्यक्रम होता है, हम आपसे अनुरोध करेंगे कि उस दिन आप ये प्रश्न पूछें तो बेहतर होगा, आपको बेहतर ढंग से जवाब दिया जा सकेगा। आज जो हमारे एक्सपर्ट स्टूडियो में मौजूद हैं अनफॉर्चुनेटली शायद वो टैक्स एक्सपर्ट नहीं है। इस बीच जयपुर से, फ्रॉम जयपुर वी आर ज्वाइन इन बाय जितेंद्र। जितेंद्र वेलकम।
हाँ
सवाल पूछें।
हाँ सर, ये बताइए कि जैसे कुछ इन्वेस्टमेंट होने वाला था और बैंक का प्राइवेट, कुछ बैंकों का प्राइवेट इस साल टाल दिया गया, तो क्या कोई रीजन इसके पीछे इलेक्शन का था या आने वाले समय में ऐसा हो सकता है फिर डिसइन्वेस्टमेंट और प्राइवेट बैंक का प्राइवेटाइजेशन?
जी रिसेंटली डिसइन्वेस्टमेंट मिनिस्ट्री की तरफ से या उनके सचिव की तरफ से कुछ स्टेटमेंट्स आए हैं अखबारों में या चैनल्स पर, उन्होंने इंटरव्यूज दिए हैं, उस पर आप ध्यान दें, उसमें उन्होंने जो संकेत दिए हैं उसके हिसाब से आप समझ सकेंगे कि डिसइन्वेस्टमेंट पर इस सरकार की नीति और इसके कदम आगे किस तरह के रह सकते हैं। अभी तक मोटे तौर पर ऐसा लग रहा है कि डिसइन्वेस्टमेंट अकेला ऐसा जरिया नहीं होगा जिसके जरिए सरकार संसाधन जुटाने की कोशिश कर रही है इस समय पीएसयू से या पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज से। कई सारे अल्टरनेटिव्स भी हैं जिन पर सरकार की नजर है। डिसइन्वेस्टमेंट के हिसाब से अगर आप ये देखें कि प्राइवेटाइजेशन होगा या नहीं, तो अभी तक ऐसा लग रहा है सरकार से जो संकेत उनके बयानों से दिख रहे हैं, खास करके डीकॉम सेक्रेटरी की तरफ से, तो अगर आप उनको देखेंगे तो आप उनकी मंशा और उनके आगे के एजेंडा को आसानी से समझ सकते हैं।
राइट, बिफोर वी टेक आवर नेक्स्ट कॉलर, हियर इज सम स्टोरी फ्रॉम द फॉरेक्स मार्केट। सरपासिंग द ऑल टाइम हाई लेवल अचीव्ड इन द वीकेंड 12th ऑफ जुलाई, इंडियाज फॉरेक्स रिजर्व्स जंप्ड बाय अनदर $4 बिलियन टू $670.86 बिलियन for the 7 days ended on July 19th, the Reserve Bank said on Friday. The overall reserves had jumped nearly $9.7 billion to an all-time high of $666.85 billion in the week that ended on July 12th. And our next caller is Nitin Kumar from Delhi. Nitin, welcome to the show.
Namaskar.
Namaskar. Sawal puchhe apna.
सर, मेरे को ये जानकारी लेनी है कि हमें एफडी तैयार करनी है सीनियर सिटीजन के लिए।
नितिन जी, सबसे पहले आप अपना रेडियो सेट को थोड़ा सा वॉल्यूम कम करें या उसे बंद कर दें, इको वो जो है ना वॉइस।
सीनियर सिटीजन के लिए हमने एफडी तैयार करवानी है
जी,
और हमें किस बैंक में या कहाँ इन्वेस्ट करें जहाँ हमें सेफ, हमारे को सीनियर सिटीजन के लिए ये फायदा मिले, और ज्यादा इंटरेस्ट कहाँ मिल पाएगा। हमें शेयर मार्केट में तो जानकारी नहीं है, म्यूचुअल फंड में ब्रांच में पता किया था तो वहां भी थोड़ी सी हमें जानकारी, तो उन्होंने भी कुछ नहीं बताई। उन्होंने ये बोला कि हाँ, हम म्यूचुअल फंड करते हैं, हमारा उनसे लिंक रहता है। ये लिंक उनसे कैसे रहता है, बैंक क्या ब्रांच अपनी तरफ से भी क्या म्यूचुअल फंड करते हैं कि नहीं करते?
जी 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 नितिन जी, मैं इस सवाल का आपका आपके इस सवाल का मैं जवाब देता हूं। राजीव जी भी अभी थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगे। देखिए, आप जैसा आपने बताया कि सीनियर सिटीजन हैं आप रिटायर हुए हैं, ये आपका निवेश, आपका इन्वेस्टमेंट कहां सेफ रहेगा, सिक्योर रहेगा, एट द सेम टाइम आपको कहां ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा। तो नेचुरली सबसे पहली बात होती है कि बैंक में आप जब भी जाएंगे तो सीनियर सिटीजन के लिए 0.5% अमूमन ज्यादा इंटरेस्ट रेट होता है एफडीज पे, सरकारी बैंक हो या प्राइवेट बैंक हो या कोई भी शेड्यूल कमर्शियल बैंक हो, कहीं भी आप जाएंगे। रही बात म्यूचुअल फंड की, तो ये प्रश्न आपका बहुत ही जायज है कि क्या बैंकों का भी तालमेल या टाइप होता है म्यूचुअल फंड हाउसों से? बिल्कुल होता है। जैसे कि बहुत सारे बैंक हैं जिनका कि अपना ही एसेट मैनेजमेंट कंपनी होता है, लाइक एसबीआई की बात करें या आईसीआईसीआई बैंक की बात करें या और भी कोई बैंक है, तो उनका इनहाउस भी एएमसी होता है, तो आप उनमें निवेश कर सकते हैं। कितना कर सकते हैं ये हम बताने में असमर्थ इसलिए हैं कि आपका रिस्क एपेटाइट कितना है, आप किस हद तक आप रिस्क ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं, कितना निवेश कर सकते हैं, आपका अमाउंट कितना होगा। हम इतना जरूर कह सकते हैं कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री आज के डेट में बहुत ही वेल रेगुलेटेड इंडस्ट्री है, सेबी की नजर इसके ऊपर होती है और आपका निवेश बिल्कुल सेफ होता है। लेकिन साथ साथ एक चीज और है कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट वो मार्केट से लिंक्ड होता है, तो आपका निवेश का जो अमाउंट हो सकता है वो प्रॉफिट में भी हो सकता है, लॉस में भी हो सकता है, लेकिन अगर आप वक्त देंगे, समय देंगे, एक थोड़ा लंबा होराइजन रखेंगे 3 साल 5 साल का, तो निश्चित रूप से पॉजिटिव में जाएगा। और अच्छे रिटर्न्स के लिए हमेशा अच्छे म्यूचुअल फंड्स, अच्छी कंपनीज, अगर आप इक्विटी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं स्टॉक मार्केट में, तो हमेशा ब्लू चिप और लार्ज कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करें, पेनी स्टॉक्स में कभी ना करें। स्मॉल कैप कंपनीज में भी मुझे ऐसा लगता है कि आपको निवेश करने से थोड़ा परहेज करना चाहिए।
जी, आपने बहुत अच्छे से इनके लिए एक्सप्लेन कर दिया है, तो इसमें मैं एक ही बात जोड़ना चाहूंगा नितिन जी के लिए, अगर मुझे नाम ठीक से ध्यान में।
जी, नितिन जी थे।
जी, तो नितिन जी, आप ध्यान रखिए कि आपके सारे पैसे किसी एक तरह की चीज में नहीं होने चाहिए, इसे हम लोग कहते हैं एसेट क्लास डाइवर्सिफिकेशन। मतलब आप अपने सारे पैसे सिर्फ एफडी में डाल करके छोड़ दें वो भी अच्छी बात नहीं है। भले ही आप रिटायर्ड हैं, आप रिस्क कम लेना चाहेंगे, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा पैसा जरूर म्यूचुअल फंड्स में लगाना चाहिए। सीधे शेयर बाजार शायद आपके लिए अभी उतना बढ़िया विकल्प ना हो, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप शायद म्यूचुअल फंड, स्टॉक मार्केट के बारे में बहुत ज्यादा नहीं जानते हैं। इसमें बेहतर होगा कि आप किसी फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लीजिए जो सेबी रजिस्टर्ड हो, सेबी से जिसने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर के लिए रजिस्ट्रेशन करा रखा हो। ऐसे किसी आसपास में अपने किसी सलाहकार को ढूंढिए, वो आपकी बेहतर मदद कर पाएंगे कि आप अपने रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से, वो आपकी पर्सनल रिस्क प्रोफाइलिंग कर देंगे, क्योंकि रिस्क कोई कितना ले सकता है वो सिर्फ एज पर डिपेंड नहीं करता है, हर व्यक्ति की अपनी प्रोफाइल पर डिपेंड करता है। तो जी,
और अगली खबर पर आगे बढ़ते हैं। एशियाई शेयर बाजार के पांच प्रमुख सूचकांकों में आज बढ़त दर्ज की गई। जापान के निक्केई में 2% का उछाल आया। हांगकांग के हैंगसेंग में 1.3% की बढ़त देखी गई। दक्षिण कोरिया का कॉस भी 1.2% की तेजी में रहा। चीन का शंघाई कंपोजिट 0.03% की वृद्धि के साथ बंद हुआ। वहीं सिंगापुर का स्टेट्स टाइम 0.5% के लाभ में रहा। यूरोपीय शेयर बाजार भी आज हरे निशान के साथ कारोबार कर रहे थे। समाचार लिखे जाने तक लंदन का फुटसी 0.7% के लाभ में, जर्मनी के डेक्स 0.3% के फायदे में और फ्रांस के कैक में 0.4% का फायदा देखा गया था। दिल्ली से भूप सिंह हमारे साथ जुड़े हैं फोन लाइन पर। भूप जी, आपका प्रश्न पूछिए।
नमस्कार सर।
नमस्कार, प्रश्न पूछिए।
सर, मैं दिव्यांगजन दृष्टिबाधित व्यक्ति हूँ।
जी, स्वागत है आपका।
मैडम, ये जो FD पे होता है, क्या इनको हम लोगों को कोई अधिक लाभ होता है FD पे? क्या सीनियर सिटीजन
भी हैं और दिव्यांग भी हैं, तो दृष्टिबाधित और पूछना चाह रहे हैं कि अधिक कुछ फायदा मिलता है?
सीनियर सिटीजन होने के नाते उन्हें अतिरिक्त ब्याज मिलेगा, ये तो पिछले श्रोता के साथ जो बातचीत हमारी हो रही थी उसमें निश्चित आपने पहले ही उनको बताया था।
जी, मुझे नहीं लगता कि दृष्टिबाधित होना एक अलग से विकल्प है जिसमें कि कुछ अधिक इनको इंटरेस्ट या कुछ अधिक ब्याज मिले। मुझे
जी, मेरी जानकारी के हिसाब से
जी ऐसी कोई जानकारी तो नहीं है।
और आगे बढ़ते हैं श्रोताओं। केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री श्री जीतन राम मांझी ने आज राज्यसभा में अपने लिखित उत्तर में देश में सूक्ष्म लघु तथा मध्यम उद्यम MSME क्षेत्र के विकास पर प्रकाश डाला। प्राप्त जानकारी के अनुसार 24 जुलाई 2024 तक देश में उद्यम पंजीकरण पोर्टल और उद्यम असिस्ट प्लेटफॉर्म पर पंजीकृत MSME की कुल संख्या 4,76,00,000 है। 2022-23 के दौरान अखिल भारतीय विनिर्माण उत्पादन में MSME विनिर्माण उत्पादन हिस्सेदारी 35.4% थी और 2022-23 के दौरान अखिल भारतीय सकल घरेलू उत्पाद में MSME सकल मूल्यवर्धित की हिस्सेदारी 30.1% थी। श्री जीतन राम मांझी ने बताया कि 24 जुलाई 2024 तक उद्यम पंजीकरण पोर्टल और उद्यम असिस्ट प्लेटफॉर्म पर MSME द्वारा रिपोर्ट किए गए कुल रोजगार की संख्या 20.55 करोड़ यानी 20,55,00,000 है।
And moving on to crude, the Brent and the WTI crude have been trading down in the global crude market today. The Brent crude decreased nearly by 5.5% to $80.76 per barrel. The US West Texas Intermediate, that is WTI, is down by 0.4% to $76.83 per barrel when reports last came in. You would like to have your views on the oil, because as we see that things are not going very right all over, globally speaking. Of course, with the war happening in at least two regions, in the Middle East and of course Ukraine, Russia is happening. So where do you see this oil going?
Currently it is going down.
Okay.
And that is a relief to us. Lekin अनसर्टेंटीज हैं, ये हमारे सामने है, लेकिन वो अनसर्टेंटीज अब इतनी पुरानी हो चुकी हैं कि एक तरह से समझिए कि मार्केट ने उनको पचा खपा लिया है। इस समय मार्केट का, अगर हम क्रूड की बात करें, तो फोकस इस बात पर है कि चाइना से डिमांड कितनी आएगी। अगर वहां से ज्यादा डिमांड उभरने लगी, अगर वहां की इकोनॉमी रिवाइवल के ज्यादा अच्छे संकेत देने लगी, तो ये क्रूड के लिए एक पॉजिटिव सिग्नल होगा। लेकिन इस समय क्रूड नीचे जाता दिख रहा है।
मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में सोना आज 0.5% की तेजी के साथ 68,910 रूपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर दर्ज हुआ। वहीं दूसरी तरफ चांदी 0.76% की बढ़त के साथ 82,150 रूपये प्रति किलोग्राम के स्तर पर कारोबार कर रही थी। राजीव जी, कार्यक्रम में शामिल होने और श्रोताओं के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
जी, धन्यवाद।
थैंक्स वेरी मच राजीव। एंड बिफोर वी क्लोज, अ रिमाइंडर ऑफ द हेडलाइंस वंस अगेन। Domestic benchmark indices end flat with a slight gain. Sensex closes at 81,356, Nifty at 24,836. India's forex reserves touches new all-time high of $670.86 billion, says the RBI, and MSME sector provides 20.55 crore employment as on 24th of July 2024, says the Union Minister for MSMEs, Jitan Ram Manji. And that's it from the team here of Market Mantra. It's goodbye.
Namaste. Market Hunter.